रुहान ऐसी बातें बोल रहा था मानो वो अनाही को नहीं बल्कि माधवी को सुना रहा हो। वो अपनी धड़कते दिल के साथ धीमे कदमों से रुहान के पास गई और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ बेटा बिल्कुल, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द वो हो जाए। ये सुनकर रुहान हल्के से मुस्कुराया, इस बार उसकी मुस्कुराहट सच्ची थी। फिर उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ ताई जी, जल्द से जल्द मुझे वो सब कुछ पता चल जाए जिसे पता करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं सब लोगों को अपना असली रूप दिखाऊंगा। रुहान ने मानी आखिर क्या चीज़ है, उसे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। मैं भी अनाज खाता हूँ, मिट्टी नहीं। मुझे भी लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और कौन मेरा कितना भला चाहता है। डर के मारे माधवी का गला सूखने लगा था। अब तो रुहान की हर बात सुनकर उसे यही लग रहा था कि जल्द से जल्द रुहान उसके बारे में सब कुछ पता कर लेगा। उसके डर से सफ़ेद होते चेहरे को देखकर रुहान भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब उसे अपने फैसले पर ज़रा भी पछतावा नहीं हो रहा था, वरना कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्का सा डर तो था कि अगर माधवी सही हुई तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उसे उन लोगों को हर्ट करने में सबसे ज़्यादा डर लगता है जो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और माधवी ने तो बचपन से ही उसकी बहुत केयर की है, उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह संभाल कर रखा है। पर उसके पीछे का मकसद रुहान कभी समझ ही नहीं पाया। आखिर उसे रुहान से चाहिए क्या? उसे लगता था माधवी उसे सेल्फलेस लव करती है, क्योंकि वो बचपन से उसके सामने रहता है। शायद माधवी अनंत से भी ज़्यादा रुहान के साथ रही है। थोड़ी देर कमरे में रहने के बाद अब रुहान को माधवी का चेहरा देखकर भी घुटन होने लगी थी, क्योंकि माधवी अभी बार बार उसकी तारीफें किए जा रही थी और उसे बार बार डाइवोर्स करने के लिए बोल रही थी। रुहान बेड से उठते हुए बोला, मुझे ना नींद आ रही है, अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वैसे भी अब मैं मैडम जी को घर से तो निकाल ही दिया है, कम से कम थोड़ी देर तो मैं सुकून से सो पाऊंगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ये सुनकर माधवी का चेहरा खिल उठा। क्या सच में रुहान अनाही को घर से बाहर निकाल कर आया है? उसके बाद रुहान अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही माधवी ने फिर से लैपटॉप ऑन करके देखा कि रुहान कमरे में जाने के बाद क्या करने वाला है, कहीं वो उसे झूठ तो नहीं बोल रहा है और उसे नींद आ भी रही है या नहीं। लेकिन उसने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, उसने देखा रुहान सीधा बेड पर जाकर सो गया था। ये देखकर माधवी के दिल को तसल्ली मिली कि आज भी रुहान उससे जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है। वहीं दूसरी तरफ अनाही ने अपने पैर का इलाज करवा लिया था और उसके पैर पर बैंडेज बांधी गई थी। उसके बाद ड्राइवर उसे वापस घर लेकर आया। निवेदिता जो हॉल में बैठी थी, उन्होंने जैसे ही देखा कि अनाही वापस आ गई है, उन्होंने जल्दी से विवाह का कॉल कट कर दिया और फिर लगभग दौड़ते हुए अनाही के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम वापस आ गई, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं सच में रुहान तुम्हें घर से तो नहीं निकाल रहा है। अनाही हल्का सा मुस्कुराई और फिर निवेदिता की पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, सासू माँ, मैंने बताया तो था आपको, आपका बेटा ऐसा ही है, हम दोनों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वो एक्चुअली ना मेरे पैर पर चोट लग गई थी और मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं भी देखता हूँ आखिर तुम डॉक्टर के पास कैसे नहीं जाती हो, अगर ऐसे नहीं जाओगी तो मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। बस इतनी सी बात थी, आप तो खामखा डर गई थीं। ये सुनकर निवेदिता ने हैरानी से अनाही की तरफ देखा और फिर उसके पैर की तरफ देखा, फिर उसे संभालते हुए हॉल के सोफे तक लेकर आई और उसके पास बैठते हुए बोली, ऐसी लापरवाही मत किया करो अनाही, मैं तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर उन्होंने प्यार से अनाही के पैर को अपने हाथ में ले लिया, जिसके साथ ही अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे मम्मी जी, ऐसे तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, बहुएं सास के पैर छूती हैं, ये काम तो हमारा होता है। निवेदिता ने हल्के गुस्से में अनाही को देखते हुए कहा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं अनाही, ऐसे कैसे तुम लापरवाह बन सकती हो, कितना बड़ा बैंडेज बंधा है, यानी कि कांच बहुत अंदर तक गया होगा। निवेदिता के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे अनाही से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर अनाही निवेदिता के गले लगते हुए बोली, आपको पता है मम्मी जी, पहले मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी, वो मेरी छोटी छोटी बातों पर मेरा ख्याल रखती थी, आप भी बिल्कुल वैसे की वैसी हो। ये सुनकर निवेदिता के होंठों पर स्माइल आ गई। फिर निवेदिता ने अनाही के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुम्हें बताना था कि विवाह ट्रिप पर बहुत खुश है, उसने मुझसे एक घंटे कॉल पर बात की है, मुझे उसकी खुशी देखकर बहुत सुकून मिला, बस तुम्हारे और रुहान के बीच भी जो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो जल्दी से खत्म हो जाएं। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहती हूँ, अनाही ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा मानो 70% मुसीबतें जा चुकी हैं, अब जो 30% वायरस बचा है उसे भी आपकी बहू बहुत जल्दी खत्म कर देगी। अनाही की ऐसी बातें सुनकर निवेदिता भी अपनी स्माइल रोक नहीं पा रही थी। शाम के करीब 6 बजे थे जब पार्थ अपने बंगले में पहुंच चुका था। वो बंगले के हॉल में चेयर पर बैठा था, बिल्कुल किसी राजा की तरह। उसके सामने घुटनों के बल तीनों लड़के बैठे थे जिन्होंने कॉलेज में रूही को छेड़ने की कोशिश की थी। वो तीनों ही काफी डरे हुए थे और पूरी तरीके से पसीने से लथपथ थे। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप एक माफिया बॉस हो और हम उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे हैं, हमें तो लगा था बस आप उसके गार्डियन हो और उसके अंकल भी। पार्थ ने अगले ही पल उस लड़के के सीने पर अपना पैर रखकर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर गंदी नजरें डालने की, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, अब इसकी सजा तुम तीनों को मिलकर रहेगी। मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पार्थ ने मानी के सीने में दिल नहीं धड़कता है बल्कि आग जलती है जो अपने आसपास वालों को भी झुलसाने के अलावा दूसरा काम नहीं करती है। लड़कों का डर बढ़ता ही जा रहा था, जो उनमें सबसे पीछे था उसने तो डर के मारे पैंट भी गीली कर दी थी। उसे ऐसा करता देखकर पार्थ के बॉडीगार्ड्स अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। पार्थ ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग जो रोज जिम जाते हो उसका क्या फायदा हो रहा है, ये जो लेग एक्सरसाइज करते हो वो फायदेमंद है भी या नहीं, चलो शुरू हो जाओ। ये सुनकर बॉडीगार्ड्स ने अपनी गन को साइड में रखा और फिर सबके सब एक साथ उन तीनों लड़कों के पास आए। वो 6 बॉडीगार्ड्स थे, सबने अपना अपना फेवरेट लड़का सिलेक्ट कर लिया था और अब वो दो दो के ग्रुप में उन लड़कों को लातों से मार रहे थे। उनकी चीखें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। पार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए चेयर के हेडरेस्ट पर अपना सिर टिका चुका था। उन लड़कों की चीखें सुनते वक्त उसकी आंखों में रूही का चेहरा घूम रहा था। जब ये लड़के उसे परेशान कर रहे थे तब वो कितना डर गई थी, और उसके बाद उसे जैसे ही पार्थ मिला था उसके चेहरे पर कैसे सुकून उतर आया था।
थोड़ी देर बाद उन लड़कों की चीखें कम होने लगीं क्योंकि वो अधमरे हो चुके थे। ये देखकर पार्थ ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। उसने देखा बंगले का फर्श खून से लाल होने लगा था। ये देखकर पार्थ के चेहरे पर एक संतुष्टि वाली स्माइल आ गई। फिर वो चेयर से उठा और अपनी जैकेट सही करते हुए बोला, गुड जॉब, अब मुझे लग रहा है कि मैं सही लोगों पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और बंगले को पूरी तरीके से साफ कर देना। इतना बोलकर वो तेजी से बंगले से बाहर जाने लगा। टू बी कंटिन्यूड, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई वर्क।